بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته وإطرته الطيبين الطاهرين. لا سيما سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وصلى الله على ابنة المختار ابنة خير المرسلين البتول وبزعة النبوة سيدة نساء العالمين، الصديقة الصفية الكوثر وسيدة نساء أهل الجنة، الطاهرة والطهر العالمة الأمينة الوحي سيدة نساء المسلمين، عذيلة مريم الأضرى وولية الله عاني فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. میں آپ سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں اس ملکوتی ہستی سیدت النساء العالمین و بدعت الرسول المرسلین کی ولادت باسعادت کی اس رات کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر ہم سب مل کر صاحب العصر والزمان حجت اللہ و بقیت اللہ فی الارضین مولانا و مقتدانا الامام الحج المہدی ہذہ الامہ صلوات اللہ و سلام علیہ کے حضور مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یقیناً مولا کی بارگاہ سے ان کی جدہ طاہرہ و مطہرہ و اطہرہ کی ولادت کے دن ہم یقیناً عیدی کے بھی طلبگار ہیں کہ ائمہ علیہ السلام ہمیشہ ایسے مبارک دنوں میں عیدی عنایت فرماتے ہیں، اور آج کی جو عیدی ہے وہ سب سے پہلے تو مولا سے یہی التجا ہے اور خدا سے دعا ہے کہ مولا کے ظہور میں تعجیل ہو جائے اور جلد از جلد جو ہے اس سلسلہ فاطمی کے انوار 14 یعنی 14ویں نور کی ہم زیارت کر سکیں انشاءاللہ، اور اگر نصیب میں نہ ہو مر جائیں اس دنیا سے چلے جائیں تو رجعت میں ہمیں یہ خدا توفیق دے کہ واپس اس کرۂ ارضی میں ہم آ سکیں، رجوع کر کے رجعت سے آ سکیں اور اس نورانی وجود کے کا دیدار کر سکیں انشاءاللہ تعالی. اور باقی جو اگلی عیدی ہے وہ تمام مومنوں و مومنات بندگان خدا ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، اسیر ہیں، گدا ہیں، اور در اہل بیت میں تو ہمیشہ جو ہے ایک فقیر کی طرح اپنے کشکول کو لے کے بیٹھنے والے ہیں. تو لہٰذا تمام مومنین کی جو بھی حاجات ہیں، مخصوصاً آرگنائزرز جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے، ہمارے افسر بھائی بزرگوار جنہوں نے قصیدہ پڑھا، اس بچے جنہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی، اور سب کی جو ہے جو بھی حاجات ہیں شرعی ہیں اپنی درگاہ میں قبول و مقبول کرے. اور تیسری عیدی ہم اس دعا کو مانگتے ہیں کہ جیسے افسر بھائی نے بھی عرض کیا کہ دنیا میں جہاں پر بھی مظلوم طبقہ رہتا ہے، کوئی بھی انسان مظلوم ہے، مخصوصاً یمن کے مظلومین جو اس وقت بہت زیادہ دباؤ اور پریشر میں ہیں لیکن ثابت قدم ہیں، استقامت ہیں، کیونکہ وہ فاطمی ہیں، علوی ہیں، مہدوی ہیں، پروردگار عالم جو ہے مظلومین کو ظالم کے مقابلے میں مزید استقامت عنایت کرے انشاءاللہ. انشاءاللہ شب ولادت ہے، کوشش کریں گے کہ کچھ موضوعات کو ڈسکس کریں، اور انشاءاللہ تعالی کہ خدا متعال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ زبان پر ایسے کلمات جاری ہونے اور سماعت میں ایسے نورانی چیزوں کے آنے کی توفیق ہمیں ملے ہم سب کو، کہ جو ہماری زندگی اور آخرت کے لیے مشعل راہ بن سکیں انشاءاللہ اور باعث سعادت بن سکیں. سیدہ کائنات سیدت النساء العالمین، آپ کی سیرت و جو کردار کا عملی جو مختصر ترین عرصہ ہے وہ بظاہر یہی ہے کہ 18 یا 19 سال کی حیات طیب و طاہر ہے، اور مجموعی جو آپ کی سیرت ہے عملی طور پر اور اسی طرح علمی اور کلامی طور پر ہے وہ ہمارے پاس جو ہے موجود ہے. انشاءاللہ خلاصہ ایک اس کا جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ خلاصے سے بھی بلکہ خلاصہ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں. دیکھیں، آپ کی حیات طیب و طاہر کے شادی کے بعد تقریباً 8 سال سے 10 سال کا عرصہ بیان ہوا ہے، جو تواریخ کے اندر اختلاف ہے، اس اختلاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے میکسیمم 10 سال کہہ سکتے ہیں، مینیمم 8 سال کا ہے جو شادی کے بعد کا عرصہ ہے. صرف اسی عرصے کو بھی ہم لے لیں तो इस 8 से 10 साल के अरसे में इस मुअज्जमा मुकर्रमा मुतहरा बीबी जो मलकूत से कुर्रे अर्जो समा वो खाक पे तशरीफ लाई थी, जो कुछ आपने सिर्फ इसी अरसे में बयान फरमाया है, वो एक इंसान अपने 1000 साल में नहीं कर सकता है। ना प्रैक्टिकली ऐसी ऐसा एक नमूना दिखा सकता है, ना थ्योरेटिकली और कलामी एतबार से कोई ऐसी चीज पेश कर सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है। मुख्तसर अरसे हयात है कुर्रे अर्ज में इस मलकूती वजूद का, लेकिन इस मुख्तसर अरसे हयात में पूरी इंसानियत के लिए वाकई हकीकत ने मशाले राह है कि जिसके कुछ नमूनों पे हम डिस्कस करेंगे। एक बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हम बीबी की अजमत को की एक मारिफत रखते हैं और उस मारिफत की बिना पर हम कह रहे हैं तमाम इंसानों के लिए मशाले राह है। नहीं, ऐसा बड़ा ऐसी दावा नहीं कर रहे हैं, हकीकत में ऐसा ही है। और आपकी सीरत एक्सपायरी डेट भी नहीं रखती है, नऊज़ु बिल्लाह, वरना कुरान मजीद की आयात की तरह है, क्योंकि ये कुरान नातिक है बीबी, और हकीकत में ही कुरान नातिक है। मैं कुछ शायराना जुमरा नहीं बोल रहा है नहीं बोल रहा हूँ, और पहले हदीस सकलेन के जुमरे में हम इसको टेक्निकली भी डिस्कस कर चुके हैं, और आप मुसलसल सुनने वाले सामीन हैं तो मेरे लिए आसानी रहती है। हकीकत में जो है आप कुरान नातिक हैं, लिहाजा जिस तरह कुरान नातिक कोई एक्सपायरी डेट नहीं रखता, उनकी तालीमात हमेशा के लिए होती हैं। इस बा अजमत बीबी की तमाम सीरत भी मर्द हो जन, औरत हो या मर्द हो, कयामत तक हर इंसान के लिए, हर माशरे में, हर सोसाइटी में वाकया मशाले राह है। अच्छा, एक जो मसला है जिसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करना जरूरी है, वो ये है कि आम मुसलमान, आम जो मुसलमान है आपकी सीरत और तारीख को जो पढ़ते हैं, तो आपके मकाम में मलकूती या रूहानी मकाम को अल्लाह के रसूल या इमाम अली अलैहिस्सलाम या हसनैन अलैहिस्सलाम या अइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम से जो आपका नसबी ताल्लुक है, उस ताल्लुक की बुनियाद पर परखते हैं और फरमाते हैं कि बीबी की शान ये है कि वो हसनैन की वालिदा है, बीबी की शान ये है कि वो मौला अली की जौजा है, बीबी की शान ये है कि खातमुन नबीयीन रहमतुल आलमीन की बेटी है। दुरुस्त है, ये अच्छा अच्छा तरीका है समझने का, और यकीनन ये सारी फजीलतें भी शुमार होती हैं, लेकिन बीबी की शख्सियत यहाँ खुलासा नहीं होती है। नसबों और रिश्तों की पहचान में बीबी की शख्सियत का खुलासा नहीं होता, और मेरे ख्याल में ये दुरुस्त भी नहीं होगा कि इसी पर आदमी रुक जाए और ठहर के कहे कि ये हो गया। नहीं, आपकी बीबी की शख्सियत, इस मुअज्जमा हस्ती की शख्सियत एक मुस्तकिल शख्सियत है, मुस्तकिल पहचान रखती हैं, मुस्तकिल शिनाख रखती हैं। ये रिश्ते, ये नाते बाद में आते हैं, ये एक इजाफी चीज के तौर पर इसके जो है इस बीबी की पहचान के लिए और आइडेंटिटी के लिए आ जाते हैं। सिर्फ इन्हीं की वजह से बीबी की मकाम मंजिलत तो हस्ती और मलकूतियत तो रूहानियत तो मानवियत तो तहारत जो है, और इनसे जो है वो नहीं पहचानी जाती। मसलन हमने सुना है कि जो ये जो अजीम हस्तियां हैं जिनके साथ बीबी के रिश्ते हैं मुख्तलिफ, इनके किरदार में भी हमें ऐसी चीजें मिलती हैं कि जो सिर्फ रिश्तों के सबब जो है बीबी की वो अजमत घर के अंदर बेनवान बाप के पास एक बेटी के तौर पर ये अजमत जाहिर नहीं होती है, बल्कि आपकी अपनी एक मुस्तकिल शख्सियत और हैसियत के सबब जो है जाहिर होता है कि अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से बढ़कर उस मुअज्जमा बीबी और मुअज्जमा खातून का एहतराम कर रहे हैं जो मलकूत से कुर्रे अर्ज में तशरीफ लाई है। नहीं ये कि आप सिर्फ अपनी बेटी की वजह से कर रहे हैं, या मौला अली अलैहि सलाम अपनी बीवी की वजह से कर रहे हैं, या हसनैन अलैहि सलाम क्योंकि वालिदा हैं तो वालिदा के एहतराम में ऐसा कर रहे हैं। सिर्फ ये बात नहीं है, ये इजाफी चीजें हैं, अपनी जगह मौजूद है, इसमें इससे इनकार नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन कह रहे हैं कि अगर बीबी की हैसियत को समझना है तो इससे हटकर जो मुस्तकिल है, मसलन कुरान मजीद भी आपकी इस मुस्तकिल शख्सियत और हैसियत की गवाही देता है। सूरह कौसर आपने बारहा उलमा से तफसीर सुनी है, और इसी तरह दीगर जो जितनी भी आयतें हैं, आयत तहीर से लेकर जो है आयत इतआम तक, یہ تمام آیتیں بھی آپ کی مستقل حیثیت اور مقام و منزلت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ بس اللہ کے رسول کوثر کے اعزاز میں کھڑے ہوتے ہیں، بیٹی کا ہونا وہ ایک اضافی مسئلہ ہے، کیونکہ ہر بیٹی کے لیے تو اس طرح کھڑے نہیں ہوتے تھے اللہ کے رسول۔ بہرحال اللہ کے رسول نے بھی جب آپ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے تو اس میں بھی فرمایا ہے کہ اپنی ام ابیہا ہیں، وہ بدعت منی ہے۔ کسی نے سوال کیا بدعت منی سے مراد یہ کہ جیسے ہم پیار میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں میری آنکھوں کی روشنی، میرے دل کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا، کیا اس طرح کا کوئی پیارا جملہ بیان فرمایا اپنی بیٹی کی محبت میں؟ فرمایا نہیں، فرمایا انہا بدعت من رسالتی، فرمایا نہیں یہ اور موضوع ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ بیان نہیں ہو رہا، باپ کی بیٹی سے محبت بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آفیشلی جو پیغمبر اسلام جو آفیشل الہی منصب رکھتے ہیں اس منصب کے عنوان سے آفیشلی سیدت النساء العالمین کی جو مقام و منزلت عند اللہ ہے اس کو پیش نظر رکھ کر جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ زہرا نبوت و رسالت کا، کار نبوت و رسالت کا، مشن نبوت و رسالت کا، منصب الہی و ملکوتی نبوت و رسالت کا حصہ ہیں۔ یہ اصل میں میں فرمان، یا مثلا روایات میں کہا کہ جب آپ بی بی تشریف لائیں تو آپ استقبال کرتے تھے، باپ جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول ہوں، اپنی بیٹی کے لیے استقبال کرتے، بیٹی کے لیے استقبال نہیں ہے شروع، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ پہلے یہ ہے کہ ملکوتی ہستی فاطمہ زہرا صاحب کوثر یطہرکم تطہیرا، صاحب آیہ اطعام کی ایک ملکوتی ہستی کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اسی لیے جملہ بھی جو آیا ہے کہا قام لہا نہیں قام الیہا، علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تھوڑی سی آپ کی جو مستقل حیثیت اور مقام و منزلت ہے اس کو ٹیکنیکلی تھوڑا سا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ میں آپ کو زیادہ سما خراشی نہیں کرنا چاہوں گا، نہ زیادہ جو ہے علمی اکیڈمک گفتگو اور اس کی موشگافیوں کے اندر آپ کو گم کرنا چاہوں گا، بس تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ عام سامعین اور ہماری نئی جنریشن کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ کس طرح یہ انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، فرمایا کہ حضرت فاطمہ سیدت النساء العالمین ہیں، دنیا کی تمام جو ہے عورتوں کی سردار ہیں بلکہ مردوں کی بھی سردار ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام نہ ہوتے تو آپ کا کوئی ہمسر، کفو جس کو ہم کہتے ہیں، ہمسر برابر کوئی بھی نہیں تھا کہ جو آپ سے شادی ہو سکتی تھی جن سے اس ملکوتی ہستی کی۔ اسی طرح جو ہے تو یہ جو دو چیزیں، صرف انہی دو حدیث کو ہم لے لیں کہ تمام عورتوں کی آپ سردار ہیں، جنت جنت میں جو ہے آپ سب کی سردار ہیں، تمام مرد و انسان آپ کے نمونے عمل ہیں، آپ مولا علی نہ ہوتے تو آپ کے لیے کوئی ہمسر نہ ہوتا، یہ سب اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول کی بیٹی کا رشتے کے لیے کوئی سٹینڈرڈ والا بندہ چاہیے، نعوذ باللہ، اس طرح نہیں ہے موضوع، یہ نہیں ہے، کیونکہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں، یعنی موضوع صرف اتنا نہیں ہے بلکہ جناب سیدت النساء العالمین کا مقام و منزلت رسول کی بیٹی ہونا ایک اضافی فضیلت ہے، لیکن اس سے پہلے خود جناب سیدہ واقعاً اتنا بڑا مقام و عظمت رکھتی ہیں کہ اس مقام و عظمت کے برابر اور لیول پر کوئی اور بندہ نہیں ہے سوائے مولا علی علیہ السلام کے۔ مثلا اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں وجودی کمال، یعنی ذاتی کمال، وجودی کمال، ذاتی کمال ہوتا نا، ایک وقت ایک کمال کسی کو فضیلت ملتی ہے کسی اور وجہ سے، کیونکہ فلاں شخصیت کا بیٹا ہے اس لیے لوگ اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، نسبی اور حسبی یا سببی ہم کہتے ہیں، یہ نہیں ہے، وجودی کمال ہے، یعنی خود آپ کی اپنی ہستی اتنی بلند ہے کہ آپ کی برابری صرف مولا علی جیسے ہی کر سکتے ہیں، آپ کے کفو ہمسر بن سکتے ہیں، لہٰذا آپ کا یہ کمال وجودی کمال ہے، مطلب کیا رشتوں کی وجہ سے نہیں ہے، رشتے ثانوی اور سیکنڈری ایک اضافہ ہے اس کے اوپر، رسول کی بیٹی ہیں، حسنین کی والدہ ہیں، مولا علی کی زوجہ، یہ اضافی چیزیں ہیں، اصل جو ہے آپ کی مقام و منزلت ان چیزوں سے نہیں ہے، نسبی اور حسبی چیزوں سے یا سببی چیزوں سے یوں کہیں، بلکہ سبب اور نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ خود آپ کی اپنی ذات کا کمال ہے، کیونکہ حقیقی کمال قرآن مجید کی آیات، روایات، احادیثیں یہ ہمیں سمجھاتی ہیں، دیکھو ایک حقیقی کمال اور مقام اور فضیلت کیا ہے، خود اس شخص کا کمال ہے، खुद उस हस्ती का कमाल है, क्योंकि जनाब सईदा की बात हो रही तो मैं लफ्ज हस्ती इस्तेमाल कर रहा हूँ, आम मर्दों में भी यही है। मसलन पिदरम सुल्तान बूत, कोई नहीं होता क्योंकि मेरा बाप जो है अजीम था, तो जरूरी नहीं है मैं भी अजीम हो जाऊं। वो अलाम इकबाल कहते हैं जवाब शिकवा के अंदर एक शेर है, बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर लाया के मीरास पिदर क्यों कर हो। भाई हो सकता है बाप अजीम हो बेटा अजीम ना हो, बाप की वजह से बेटे को हम कोई मकाम दे तो उस बाप की अजमत की वजह से दे देंगे मकाम, लेकिन खुद उसकी अपने कोई कमाल है या नहीं है ये भी तो देखना है, खुद अपने उसमें भी कुछ है या नहीं है। तो जनाब सईद है कायनात का जो हकीकी कमाल और मकाम, खुद उस हस्ती का अपना जाती कमाल हुआ करता है, हुआ है न किसी सबब व नसब का। और हकीकी कमाल और मकाम मंजिलत असल में वजूदी जाती, आम उर्दू में शख्सी कमाल है, उसकी शख्सियत का अपना कमाल है, किसी नसब की वजह से किसी सबब की वजह से हासिल होने वाला कमाल एक इजाफी कमाल हो सकता है, एक सेकेंडरी चीज हो सकती है, लेकिन असली और हकीकी या वजूदी कमाल नहीं हो सकता है। खूब दलील क्या है इसके ऊपर, दलील ये है जैसे देखें बहुत सी अजीम हस्तियों की औलादें थीं जो उन अजीम हस्तियों की औलादें होने के बावजूद वो मकाम नहीं रखी बल्कि बहुत गिर गई, असफल साफलीन में चली गई। मसलन पैगंबरों के बेटे हजरत नूह का बेटा, अगर सबब और नसब ने कमाल बख्शना था क्योंकि पैगंबर की पैगंबर का बेटा है इस वजह से उसे कोई मकाम और मंजिला तो कमाल हासिल होना था, तो वो असफल साफलीन होके नहीं चला जाता, हत्ता कि नूह से अल्लाह कहे कि आप इसको आउट कर दो, अपनी वल्दियत से निकाल दो इसको। छठे इमाम फरमाते हैं जनाब नूह अलैहिस्सलाम मेमोरी से डिलीट कर चुके थे, उनको भूल गए थे, जब कभी याद दिलाते थे तो जहन पे जोर देते थे कि अच्छा मेरा कोई बेटा भी था पहले जो डूब गया मेरे साथ किश्ती में नहीं आया। दूसरी एक और ये बन गया क्या नसबी रिश्ता, सबबी रिश्ता, सबब से मुराद यानी वो जो ताल्लुक बनता है शादी बिना या की वजह से, मसलन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी है आपको जहर देने वाली, आप उसने जहर दिया, सबब इमाम की जोजा का सबब रखने के बावजूद इस दोनों जगहों पे सबब और नसब ने उन्हें कोई कमाल नहीं दिया बल्कि दोनों पस्ती में चले गए, असफल साफलीन के अंदर चले गए। अगर हम नसबी और सबबी कमाल को हकीकी कमाल कहें तो इसमें और भी लोग शामिल हो जाएंगे, और भी बड़ी बड़ी मिसालें हमें मिलेंगी। मसलन मैं इशारे करता जाता हूं, मसलन आप जो है जंग जमल को समझ सकते हैं कमाल रहा या नहीं रहा ये आप बेहतर जानते हैं। मौला अली का एक फरमान भी है कि फरमाते हैं कि देखें जिसे अमल पीछे धकेल देता है ना, उसका अपना पर्सनल कैरेक्टर जाती किरदार उसे पीछे धकाता है, हासब और नसब उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं कभी भी। अच्छा नसबी कमाल में एक और जो अहम तरीन मिसाल है कि अगर ये कहा जाए कि सैदत सैदय कायनात फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का कमाल हकीकी और वजूद ताहिर अतहर मुतहर की फजीलत की वजह यह है कि आप 11 इमामों की वालिदा हैं, 11 इमाम मासूम युतहिरकुम तत्हीरा की आप वालिदा हैं, इसलिए आप कमाल रखती हैं। तो फिर जनाब फातिमा बिनत असद 12 इमामों की वालिदा हैं इस हवाले से, क्योंकि एक इजाफा मौला अली की भी वालिदा है तो 12 इमाम बन जाएंगे, उसके बाद सिलसिला इसी तरह आगे निकल जाएगा। लिहाजा जो है ये कमाल है लेकिन ये हकीकी कमाल नहीं है, लेकिन जिनाब फातिमा बिनते असद 12 इमामों की वालिदा होने से फजीलत रखती हैं, लेकिन ऐसी फजीलत जो जिनाब सैयदा कायनात फातिमा जहरा बिनत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि रखती हैं वो बिल्कुल कोई भी नहीं रखती हैं, कोई और खातून इस पूरी कायनात में नहीं है, मतलब नहीं है कोई और खातून है ही नहीं, ना नबियों की बेटियों में, ना नबियों की माओं में, ना नबियों की जो है क्या बीवियों में, कोई नहीं, ना वो अवलिया में ना अम्बिया में कोई भी नहीं जिना जो जो कमाल हो मकाम व मंजिलत वजूदी हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह है। इसी तरह जो है अगर हम इसको फजीलत में गिने तो आप देखें छठे इमाम के बाद तमाम इमामों की जो वालिदाएं हैं मादरान हैं मादरान ग्रामी हैं वो सब की सब कनीजें रही हैं। कनीज का मतलब आप समझते हैं ना कि कनीज उसको बनाया जाता है जो मुसलमान नहीं होती बाद में मुसलमान हुई, जिनाब नरजिस खातून सलाम अल्लाह अलैहा साहिब अल असली व जमान की वालिदा के बारे में तो आपने कई बार चीजें सुनी भी हैं। चलो बाकी वालिदाओं के बारे में इतनी ज्यादा मालूमात ना भी हो तो इस हस्ती के बारे में तो सब मालूमात रखते हैं, जो कनीज थी, गैर मुसलमान थी, हजरत यूशे के उससे थी, जो भी थी आई। और लेकिन जो है जाहिर है कि अगर हमने इस लिहाज से कमाल और मकाम को बयान करना है, जैसे कि बाज हमारे मुसलमान भाई करते हैं, तो फिर ये सारी माएं भी वो मकाम और वो मकमाल रखती हैं? नहीं, ये मुअज्जम है, ये मुकर्रम है, ये मुहतरम है, ये मकाम व मंजिलत रखती हैं, फजीलतें रखती हैं, लेकिन कहाँ सैयदतुन निसाइल आलमीन जो वजूदी जाती शख्सी कमाल व मकाम रखती हैं, उस पर इजाफा जो है नबी जादी होना है, उस पर इजाफा जोजय अली होना है, उस पर इजाफा मादर हसनैन होना है, उस पर इजाफा 11 इमामों की वालिदा होना है, लेकिन इन सब से पहले खुद मरकज इसमत व तहारत है। अब समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहां से हम समझेंगे कि जब इमाम हमसे फरमाते हैं, देखो हमारे मानने वालों जहन में रखो, हम तमाम अइम्मा जो है ना एक के बाद एक, हम सब आप सब पर हुज्जत हैं खुदा की तरफ से, यानी हुज्जत मतलब क्या, जो हम कहेंगे उसे आपने एक्सेप्ट करना है, मानना है, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता हमसे मालूम होगा, दीन हमसे सीखेंगे, तर्ज जिंदगी हम बयान करेंगे, हम आपको रोक सकते हैं, हम आपको कह सकते हैं, हम आपको कोई भी हुक्म दें वो आप पर हमारी तरफ से हुज्जत नहीं करेंगे तो अल्लाह सुबहानहु ताला आपसे नाराज होगा। इस नाराजगी का नतीजा ये होगा कि आप जन्नत से महरूम रहेंगे, आपकी जो अरबों खरबों अनलिमिटेड जिंदगी है लाइफ आफ्टर डेथ में, उसमें आप जो है हमेशा ट्रबल में रहेंगे। अच्छा, फिर आप सब हम पर हुज्जत हैं जी, तो हम आपकी बात मानेंगे। फिर फरमाते हैं देखिए हमारी दादी हम पर हुज्जत है, वजदतुना फातिमतु हुज्जतुन अलैना। खूब इससे हम समझ सकते हैं, इसलिए नहीं कि हमारी दादी है इसलिए हम पर हुज्जत है, क्योंकि हमसे बड़ी है तो हम एहतराम में अपनी दादी की बात को मानते हैं, ये बात नहीं है। इसलिए कि हमारी दादी वजूद जाती में कमाल मलकूती वो मकाम व अजमत मलकूत रखती है, इसलिए वो हुज्जत है हमारे ऊपर। हुज्जत है मतलब क्या, जैसे हम आप पर हुज्जत है शरीय लिहाज से, शरीय एतबार से क्या है, हुज्जत है। इसलिए अब आते हैं एक, मैं तकरीबन उसकी तरफ जा रहा हूं, आधे से ज्यादा बहस हम कर चुके हैं इस टॉपिक, इस हिस्से के ऊपर हमारी बहस का। अब आते हैं आपकी जो मारिफत जाती वो वजूदी है, ये हर किसी के बस में नहीं है कि इस मारिफत को दरक कर सके। अब समझ में आया कि जब फरमाया कि जनाब सैयदुन्निसाइल आलमीन की हकीकी कमाल व अजमत व मकाम व मंजिलत व उस हस्ती मलकूती और उस वजूद मलकूती को दरक कोई भी नहीं कर सकता, कोई समझ नहीं सकता, कोई उसका इदराक नहीं कर सकता सिवाय पैगंबर के, मौला अली के, आइम मासूमिन अलैहिस्सलाम के और अल्लाह सुबहानहु तआला के। तो अब समझ में आया कि ये हकीकी मारिफत मुमकिन ही नहीं है, मलकूत तक रसाई हमारी नहीं है, अगर वो भी जाती है किसी की तो वो अदना तरीन यानी मलकूत की सीढ़ियों को छू सकता है, मलकूत के अंदर नहीं हिस्सेदार बन सकता, मलकूत के अंदर सिर्फ अनवार खमसा और अनवार अरबता अशर यानी 14 वो नूर हैं जो वहां तक रसाई रखते हैं, उस मलकूत तक रखते हैं। इसीलिए क्योंकि हम मारिफत हासिल नहीं कर सकते हैं, एक हद तक हम समझ जाते हैं, हुज्जत के लेवल तक समझते हैं, इसलिए आप जहन में रखें कि अइम्मा ने कभी भी हमसे ये डिमांड नहीं की है, फर्ज नहीं करार दिया है कि आपने, आप इंसानों ने उस कुन है हकीकत, कुन हकीकत यानी उस हकीकत असली चीज हकीकत को, उस मकाम मंजिलत व फजीलत उस वजूद मलकूती वो समावी वो अर्शी और नूरी की हकीकत को आप समझें, ये हम पर फर्ज नहीं किया। कोई एक रिवायत सुनी आपने कि आप पर फर्ज है कि मकाम सैयदतुन्निसाइल आलमीन के उस मलकूती मकाम मंजिलत को इदराक करें, ये है नहीं है, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते, जुरिस्टिक अलग है, टेरिटरी अलग है, दुनिया अलग है, हम नहीं कर सकते, वो नूर है, इधर हम खाक में हैं, हम नूरी बन सकते हैं लेकिन नूरी बनने के बावजूद, मलकूती बनने के बावजूद हम आदने तरीन दर्जे पर बैठे होते हैं, यानी अहले बैत की चौखट पे पहुंच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, चौखट पे और दरवाजे पे, वो तो अभी भी चौखट और दरवाजे पे ही बैठे हैं, भीख मांगते हैं कशकोल लेकर। इसलिए हमारी ड्यूटी नहीं लगाई, नहीं फरमाया कयामत के दिन कब्र में सबसे पहला सवाल ये होगा, अच्छा ये बताओ मकाम में अजमत वजूद हकीकी व मलकूती सैयदतुन्निसाइल आलमीन को तुमने इदराक नहीं किया है, तुम जहन्नमी हो, चले जाओ। या मौला अली के उस मकाम व मंजिलत को तुमने इदराक नहीं किया, तुम जहन्नमी हो। या इमाम हसन मुश्तबा है कोई ऐसी रिवायत है? नहीं। लेकिन एक मसले पर हमें कहा है कि पकड़ में आ जाओगे, कब? जब ये मलकूती हस्ती, ये नूरी व अर्शी हस्ती आलम खाक में आई नमूने अमल बनकर, हिदायत बनकर, आपको रहनुमाई देने के लिए, सआदत बख्शने के लिए, और इसने बहुत कुछ करके दिखाया, बहुत कुछ बताया। आपने उस पर अमल करना था, क्योंकि आपको कहा था उस पर अमल करना आपका फर्ज है, एक बात। आपको ये बताया था कि यही आपका रास्ता और दीन है, दो बातें। आपसे ये भी कहा गया था कि अगर इससे हट कर किसी और चीज पर तुमने अमल कर दिया तो नतीजा इधर और उधर दोनों में नुकसान हो जाएगा। इधर फिर भी हो सकता है तुम दुनिया में कुछ कमा लो, मजे करो, अयाशी कर लो, उधर नहीं बचने वाले, सआदत अबदी नहीं मिलने वाली, नसीब अबदी नहीं खुलने वाला, बख्त अबदी नहीं खुलने वाली, ये हमने जरूर बताया है। और इसके बारे में हम पूछेंगे भी, कैलकुलेट करेंगे बाकायदा डिटेल में, मिसकाल अजर्रा के हिसाब से हम पूछेंगे, ये हमसे किया जाएगा कयामत के दिन। तो फिर हम भी अलर्ट होशियार रहे कि इस मुअज्जमा मलकूती वजूद की सीरत, वो सीरत यानी वो अमली किरदार भी और गुफ्तार भी, सबको समझना, अंडरस्टैंड करना, दर्क करना, अपने बच्चों को सिखाना, उस पर चलाना, घर के अंदर उस तरह का माहौल ईजाद करना, घर के बाहर करना, अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से, उसी पटरियों पर, उसी नूरानी तालीमात की पटरियों पर रखना हम पर फर्ज है। नहीं करेंगे तो सजा भी मिलने वाली है, ये सईदा नाराज भी हो सकती है, और कयामत के दिन कब्र में इधर होते ही सवाल शुरू हो जाएंगे हमसे। लिहाजा ये वाजे, देखें फिर भी किसी को शक है तो क्लियरली आइम्मा ने स्टेटमेंट दिया, फरमाया देखो सुम्मियत फातिमा, हम इस हस्ती का नाम अल्लाह ने रखा है, जमीन में किसी ने नहीं रखा, अभी हम आएंगे विलादत की तरफ इंशाल्लाह, और फातिमा नाम रखा है। पता है इस फातिमा के क्या माने हैं? बहुत सारे माने हैं, जैसे कुरान मजीद की एक आयत होती है ना जिसका एक तर्जुमा आप पढ़ते हैं, उसकी माने हैं कि कई माने हैं, और टाइम टू टाइम उलमा इसमें मजीद चीजें समझते हैं, ओशियन की तरह है। इस तरह नाम फातिमा भी एक अजमत और मारिफत की ओशियन की तरह है, कई पहलू रखता है। फरमाया ले अन्नल खल्क फुतिमु अन मारिफतिहा, भाई फातिमा नाम इसलिए रखा है कि मखलूक जान ले इनकी हकीकत और मारिफत को दरक नहीं कर सकते हैं, फुतिमु है, फुतिमु हूं यानी नहीं कर सकते हैं इनकी मारिफत को, उसको पीछे पड़े ही नहीं, जाए ही नहीं, ऐसे ही लफाजी ना करें, ऐसे ही वो ना करें, आयमा ने जो बताया है वो बयान करें, बस अपनी तरफ से लफाजी ना करें, अपनी तरफ से घोड़े ना दौड़ाएं, अपनी तरफ से मुबालिगात ना करें, क्योंकि वो दर्क कर नहीं सकते हैं, उसके पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, उतना दर्क करें जितना आइम्मा ने उनको बताया है और हुज्जत करार दिया है। लिहाजा बस जो कहे सैयदा वो तुम्हारे लिए दीन है, जो करे सैयदा वो तुम्हारे लिए दीन है। ये नुक्ता क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, आपकी विलादत कब और कैसे हुई, बैकग्राउंड में क्या सूरत हाल थी, मुख्तसर शॉर्ट शॉर्ट करते हैं ये, क्योंकि थोड़ी सी डिटेल में जाना जरूरी था, हमारी जो है करंट जो मसाइल हैं अंडरस्टैंडिंग करने में दीन को, उसमें एक बड़ा बैरियर के तौर पर मुख्तलिफ चीजें आते हैं, उनमें से एक बैरियर ये था। देखिए, क्योंकि आपकी वालिदा माजिदा हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाहि अलैहा ने अरब जो एक ट्रेडिशन और कल्चर और रस्म रिवाज था, टोटली उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ, एक दौलतमंद, एक हाई फाई सोसाइटी की खातून होने के बावजूद एक गरीब यतीम, बल्कि अपने मुलाजिम से शादी की थी, इसी तरह ले रहे ना, सोसाइटी कैसे ले रही थी, इसी तरह ले रही थी, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रही। खतीजा नामी वो जो हाई सोसाइटी की, हाई फाई सोसाइटी वाली खातून है, दौलतमंद अमीर ताजिर, उसका मुलाजिम है, कौन, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, जो यतीम पला बड़ा है और बड़ा गरीब भी है, माली लिहाज से पैसा वैसा नहीं है। लिहाजा क्या बना, जब आपने जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर पाक की शादी हुई तो बायकाट शुरू कर दिया खवातीन ने, जो कुरैश की खवातीन है उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी नाक कट गई है, एक गरीब और यतीम से जाकर आपने शादी की जो आपका मुलाजिम था, हमारा तो स्टैंडर्ड गिर गया है, हम झूठे स्टैंडर्ड अभी भी है ना हमारे पास, इसीलिए आईमा ने फरमाया कोई रिश्ता आए तो देखा करें, उसमें ईमान को देखें, दीन को देखें, उस बंदे के अंदर अपनी शख्सियत है, उसमें ये दम है कि वो अपनी फैमिली को चला सकता है, उसमें ये हिम्मत है कि अपने फैमिली की जरूरियात को पूरा करने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। इन चीजों को देखें, दीनदारी को देखें, किरदार को देखें, अखलाक को देखें। ये दौलत ना देखें तो आता जाता है, दाएं बाएं हो जाती है, बड़ी बात नहीं है। उस वक्त क्योंकि ये स्टैंडर्ड और मैयार था, उनकी रस्म रिवाज भी थे, बायकाट कर दिया, कहा जी ये तुमने हमारी रस्मों के खिलाफ कर दिया है, खदीजा आज से हमारा तुम्हारा बायकाट। हमें एक वाकया नकल करता हूँ, थोड़ी सी लंबी हदीस है, बल्कि मल्टीपल हदीसें हैं, अरबी भी पढ़ूंगा शॉर्ट शॉर्ट करके, और अरबी भी पढ़ूंगा क्योंकि हदीसें नूरानी कलाम है, मासूम की जबान है, ताहिर अतार मुतहर से निकले हुए जुमले और अल्फाज हैं, तो हमारे लिए नूरानियत के सबब बनेंगे, और सैदतुन्निसाइल आलमीन की विलादत की रात है। यकीनन जो है इस रात जो है इस वक्त फजा वो समा वो अर्ज वो जमीन वो हर तरफ एक नूरानियत है, एक मलकूतियत है। इस मलकूतियत में जो भी हम मांगेंगे, दुआ करेंगे, दुनिया व आखरत दोनों के लिए इंशाल्लाह खुदाए मुताल इस मुअज्जमा बीबी के सदके में कबूल मकबूल फरमाएगा। मोहम्मद इब्ने जुरैर तबरी है, किताब दलाइल इमामा, ये वो वाला तबरी नहीं है जो आमतौर पर है, ये कहते हैं तबरी इमामिया है। इमाम सादिक अलैहि सलाम से नकल करता है, कहते हैं अन मुफद्दल बिन उमर का लकुल तुरी अबी अब्दुल्ला जाफर मोहम्मद अलैहि सलाम कई फकानत विलादतु फातिमा अलैहि सलाम। मैंने छठे इमाम से पूछा कि ये बताएं सैयदतुन्निसा आलमीन फातिमा जहरा सल्लल्लाहु अलैहि की विलादत कैसे हुई। قال نعم ان خديجه لما تزوج بها رسول الله حجرتها نسوه مكه। देखें इमाम फरमाने लगे जब खतीजा ने पैगंबर इकरामी इस्लाम से शादी की तो हजरत था निस्बत मक्का, मक्के की खवातीन ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। फकुन्ना ला यदखुलन्ना अलैहा, कोई भी उस घर में आता नहीं था क्योंकि बायकॉट थे। वला युसल्लिमन्ना अलैहा, हत्ता सलाम भी नहीं करते थे। हजरत खदीजा को दाएं बाएं कहीं पर देखा। ला यतरुकन्ना इमरातन तदखुलु अलैहा, और दूसरी औरतें जो उनके घर में कोई आने की कोशिश भी करती थी तो उसको भी रुकावट खड़ी करते थे। मसलन जैसे हमारे यहाँ है, हमने बायकॉट करना है, सब मिलकर कुरान पे हाथ रखकर कसम खाते हैं, चलो जी हम बायकॉट करते हैं। कहते हैं यार किस मसले से बायकॉट किया, कि आइंदा किसी की गइबत नहीं करेंगे, आइंदा किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, प्रोपगंडा नहीं करेंगे। कह रहे हमने फलां इमाम बारगाह में नहीं जाने का बायकॉट किया, फलां मस्जिद में, फलां तंजीम के साथ, फलां मोमिन के साथ नहीं मिलने का, अपने रिश्ते नातों के साथ नहीं मिलने का, मैंने आज से कसम खाए। अवलन ये कसम भी गलत है, ये बायकॉट भी गलत है, ये खवातीन ने किया। लायत रुकन इमरतन तदखुल, कह रहे खुद बायकाट किया, दूसरी खवातीन जो निचले तबके की हैं, अब माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको भी जाने नहीं देती थी। फस्तौहशत खतीजा मिन ज़ालिक, जहाँ पे खतीजा सलामुल्लाहि अलैहा के लिए इमाम फरमाते हैं छठे इमाम बड़ी तकलीफ देती है ये चीजें। फलम्मा हमलत बिफातिमत अलैहिस्सलाम, जिस वक्त जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का हमल जनाब खतीजा के बतन ताहिर व अतहर मुतहर में था, कानत खतीजा तु तगतुम व तहजुन, जनाब खतीजा बड़ी तकलीफ से और बड़े गमजदा अंदाज से अपने अकेलेपन में रहती थी। इस खराज रसूलुल्लाह फकानत फातिमा तुहद्दिसुहा मिन बहतिहा, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं नतीजा क्या बना, जब अल्लाह के रसूल घर में नहीं होते थे और हजरत खतीजा अकेली रह रही होती थी बेचारी और हामिला भी हैं, तो उस वक्त फकानत इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम फरमा रहे हैं, मुस्तनद तरीन जो है हदीस से आपको मालूम है हमारी शरीफ फर्ज है कि हम हदीसों को परखें पहले, फिर आपके दरमियान बयान करें। हदीस और रिवायत और इमाम के नाम पर आपके लिए गलत चीज बयान ना करें, क्योंकि इसकी शरी जिम्मेदारी है, यहाँ बचेंगे तो उधर नहीं बचेंगे हम लोग। फकानत फातिमा तुहद्दिसुहा मिन बतनिहा, अल्लाह अकबर। उस वक्त इस तन्हाई को कौन काटता था, कौन इस तन्हाई में कंपनी, आज के जमाने में कहते हैं कंपनी देना, साथ देना, कौन जो है साथ बातचीत करता था, तो हद जनाब सैयदा जहरा सलामुल्लाह अलैहा जो कि माँ के पेट में थी, माँ के पेट से गुफ्तगू फरमाती थी व तस्बिरुहा, और जो है फरमाती थी अम्मा जान आप सबर से काम ले, हौसले से काम ले, कोई नहीं आप अकेली हैं इस आलम में, कोई खातून आपके घर आती नहीं है, किसी को आने नहीं दिया था। कान हुज्नु खतीजा हदरुहा अला रसूलिल्लाह, कह रहे अल्लाह के रसूल भी इस चीज को समझते थे, इमाम फरमाते हैं, और अल्लाह के रसूल के लिए बड़ी तकलीफ दे बात थी कि यार मैं घर से जब कारे नबुवत और इमामत के लिए निकलता हूँ, मेरी बीवी उम्मुल मोमिन हजरत खतीजा घर में अकेली है, हामिला भी हैं और तनाई का एहसास कर रही है, लिहाजा तकलीफ महसूस करते थे अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल एक जानवर को थोड़ी सी तकलीफ में देते थे तो तड़प जाते थे, तो कैसे वो भी खतीजा जैसी एक बाजमत खातून जो आपकी जोजा भी हूँ, यकीन उसकी तकलीफ को कितना तकलीफ महसूस करते होंगे अल्लाह के रसूल। इमाम फरमाते हैं इस हदीस में, कानत खतीजा तो तक तुम दालिक अन रसूलिल्लाह। दिलचस्प बात यह इमाम फरमाते हैं कि हजरत खतीजा ये बातें अल्लाह के रसूल से शेयर नहीं करती थी कि देखें आपके जाने के बाद मैं अकेली नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरे पेड़ में जो जो है मेरी औलाद है वो मुझसे बातचीत करती हैं। ये बात नहीं बताती है, नहीं बताती थी अल्लाह के रसूल के इमाम के हदीस के मुताबिक। फदखल यौमन फसमिअ खतीजा तुहद्दिसु फातिमा, एक दिन अल्लाह के रसूल घर में दाखिल हुए तो देखा कि जनाब खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा गुफ्तगू फरमाती हैं। फकाल लहा, उस वक्त जनाब खदीजा से सवाल किया, या खदीजा मन युहद्दिसु की, हे खदीजा कौन है जिससे आप बातें कर रहे हैं? जाहिर है अल्लाह के रसूल के लिए उचंदा दे कि भाई अगर कोई आया घर में, कोई खातून आ गई मेरे जाने के बाद, कोई एक ने हिम्मत कर दी, इस बायकाट को तोड़ दिया, ये जो आइसोलेशन में डालने का प्लान बनाया पूरे कुरैश ने अपने स्टेटस और उसको बरकरार रखने के लिए। قالت الجنون الذي الجنين الذي في بطني يحدثني ويونسني الله اكبر। क्या जुमले फरमाया कि जनाब खदीजा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह ये जो बच्चा मेरे पेट में है ये मेरे साथ बातें करता है और मेरी तन्हाई को दूर करता है। فقال لها, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या खदीजा ए खदीजा, हाजा जिब्रील युबशिरनी बिअन्नहा उनसा, ये देखो जिब्रील आ गए। इसी वक्त इसी दौरान ही में जिब्रील का नुजूर हो गया। इस अजमत सय्यदा देखें आप, जिब्रील उसी वक्त नाजिल हुआ, युबशिरुनी बि अन्नहा उन्था, और जिब्रील ने खुशखबरी दी है कि ये जो बच्चा आपके पेट में है ये बेटी है, उनसा है, ये मानस है, ये बेटी है। वह अन्नहा नसमु ताहिरतुल मैमूना, और जिब्रील ने खुदा का ये पैगाम भी दिया है कि ये ताहिरा हैं और आपके लिए बाइस खैर व बरकत व नेक व अजमत हैं। व अन्नल्लाह सयजअलु नस्ली मिनहा, जिब्रील ये भी बता रहे हैं कि मेरे नस्ल का सिलसिला इस बा अजमत बीबी से जो है चलेगा। व सयजअलु मिन नस्लिहा अइमतुन फिल उम्मा, और उसके बाद जो है इस बीबी की नस्ल से ही उम्मत के इमाम, इम्मत के वली अल्लाह की जानिब से आएंगे। वयजअलहुम खुलफाउ फिल अर्ज़, वही लोग होंगे जो जमीन के हकीकी वारिस और हाकिम होंगे। बादा इन्क़िज़ाए वही, जब मेरी वही का सिलसिला रुक जाएगा, मतलब इस दुनिया से चला जाऊंगा। ये जो है एक तुलानी हदीस थी। उसके बाद हदीस का जो अगला हिस्सा है वो भी मैं चाहूंगा पढ़ूं। फलम तज़ल खदीजतु अला ज़ालिक अन हज़रत विलादतिहा फवज्जहत इला निसाए कुरैश, और जब बीबी की विलादत का वक्त करीब आता है उस वक्त क्या किया जनाब खदीजा ने, फिर एक मरतबा वज्जहत इला निसाए कुरैश, कुरैश की खवातीन से राबिता किया। व बनी हाशिम, और बनी हाशिम के खवातीन से भी राबिता किया। लैलैनी में दो दफा जो है दो रातें कोशिश की कि उनसे उनको कन्विंस करें कि माँ तलिन निसा उमर, क्योंकि आ जाए मेरे पास घर में, अब मेरे हमल के आखिरी अय्याम हैं, विलादत के टाइम आ रहा है, इसमें खवातीन की जरूरत होती है हेल्प करने के लिए। माँ तलिन निसा उमिन निसा, लेकिन कोई एक खातून भी नहीं आई, कोई भी नहीं आई। अजीब, देखें किस कदर अजीब किस्म के लोग थे, अजीब सकाफतें थी, अजीब मेंटालिटी है। अफसोस ये है, ये उधर हो के हिस्ट्री का हिस्सा होती तो फिर भी चलो कहते अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी है हमारी मुस्लिम इवन शिवस सोसाइटी के अंदर भी ये जो बाज औकात हरकतें करते हैं, हत्ता रिश्तों के अंदर ये मामला नजर आते हैं। अब देखें ये कौन सी सीरत है, ना ये हजरत खदीजा की है, ना पैगंबर खुदा की, ना सैयदुन निसाइल आलमीन की, ये उन कुरैश की उन खवातीन की सीरत है जो ये बायकाट करके उम्मुल मोमिन हजरत खदीजा से बायकाट किया है, सैयदुन निसाइल आलमीन के विलादत के वक्त बायकाट करके बैठी हुई है। फिर उस वक्त फारसला ना इलाइहा भी अन्न का असही तना वलम तक बली कौलना, क्या खवातीन का जवाब क्या था? इमाम फरमाते हैं छठे इमाम की हदीस है, और फारसला इलाइहा भी अन्न का देखें पैगाम भेजा हजरत खजू, देखो तुमने हमारी मुखालिफत की है ना, वलम तक बली कौलना, तुमने हमारी बात नहीं मानी। व तजवजद मुहम्मदन यतीम अबी तालिब, तुमने जो है यतीम अबी तालिब मोहम्मद से जाकर शादी कर ली। फकीर अल्लाह माल अलहू, उसके पास तो कोई पैसे ही नहीं था, बड़ा फकीर आदमी था, क्योंकि फकीर होना उनके ख्याल में गरीब होना, कम आमदनी होना उनके ख्याल में स्टेटस नीचे लो होना है, जैसे आज भी हमारी सोसाइटीज में ये है अफसोस के साथ, अब क्या करें ये है। फलसना नजीबु की, बस आज हम तुम्हारी जो है ना मदद करने के लिए हम तैयार हैं, हम तो नहीं आएंगे। वला नुली मिन अमरी की शैअन, हम तुम्हारा कोई भी काम नहीं करने वाले, कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं। फातिमा खदीजा तुजाली, जनाब खदीजा के लिए फिर जो है ये एक तकलीफ देह वक्त था। लेकिन हुआ क्या, नतीजा ये हुआ, इस इस्तकामत हजरत खदीजा उस बुरे माहौल के अंदर की नेक सीरत खातून अल्लाह की गैब से नुसरत आ गई। ये नुसरत दोनों सबब इसके पीछे हैं, एक सैयदतुन निसाइल आलमीन मलकूत से अर्ज में तशरीफ ला रही हैं, दूसरी हजरत खतीजा उम्मुल मोमिनीन की हाँ विलादत होने जा रही है। ये देखती हैं कि चार खवातीन जिंदगी के करीब नजर आ रही हैं, फरमाती हैं अब तुम कौन हो, कह रही हैं मैं सारा हूं, इब्राहिम की बीवी, वो आसिया हैं बिन्त मुजाहिम, वो मरियम अजरा हैं, वो चौथी जो है कुलसूम जनाब मूसा की बहन है। कुछ देर के बाद घर में एक नूर आ जाता है, देखते हैं कि जन्नत से हुरें तशरीफ लाई हैं, जिनके हाथों में वो तमाम लवाजिमात हैं जो विलादत के वक्त नॉर्मली तौर पर जमीन और कुर्रे अर्ज की रिक्वायरमेंट्स में से होती हैं, उन तमाम लवाजिमात को लेकर तशरीफ ले आती हैं। फिर जो है जनाब सारा हजरत इब्राहिम की बीवी मुखातब होकर फरमाती हैं, अल्लाह ताला ने हमें आपके पास भेजा है ताकि इस हस्ती की दुनिया में विलादत के और आमद के वक्त हम आपकी मदद कर सकें। और जनाब सैयदा की विलादत के वक्त कहते हैं नूर मलकूत से कुर्रे अमद, यानी नूर मलकूत जब कुर्रे अर्ज पर उसकी आमद हो जाती है तो तकवीन के अंदर बड़ी तब्दीलियां होती हैं। अब ये तब्दीलियां ऐसी हैं कि हम और आप आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत सुने देखा, अल्लाह के रसूल ने देखा होगा, खुदा के साले बंदों को जिसे अल्लाह चाहे उसे दिखा सकता है। अब जो है एक ये विलादत का मरहला, इसके अंदर बहुत सबक आमोश चीजें हमारे लिए, अगर आप माएं बहनें दिक्कत करें और गौर करें तो हजरत फातिमा ज़हरा सलाम ने यहाँ की 18 या 19 साल जो जिंदगी है उसको हम तीन हिस्सों पे डिवाइड कर सकते हैं सीरत को समझने के लिए, विलादत से हिजरत तक, फिर हिजरत के बाद जो है आपकी शादी इज़दवाजी 8 साल जिंदगी, और उसके बाद अल्लाह के रसूल की रहलत के बाद का जो एक मुख्तसर 90 डेज या 94 डेज या 74 या इस तरह के आसपास के जो दिन हैं उनको हम कह सकते हैं। देखें इस्लाम की बिगिनिंग होती है, जब इस्लाम का आगाज हो चुका है तो काफी सख्त किस्म के सियासी और समाजी मसाइल थे, मुखालिफतें थीं, बड़े हंगामे थे, शोर शराबे थे। उसके बाद फिर एक फिर बदतरीन एक बायकाट और मुहासरे का पीरियड शुरू होता है जो शेब अबी तालिब में 3 साल रहते हैं, शेब अबी तालिब जनाब सैयदा भी वहां पर मौजूद हैं। फिर हिजरत करना पड़ता है अपनी आबाई सरजमीन, बना बनाए घर, जिस जो जुमले हम बोलते हैं, इस सब को छोड़ मोड़ कर सिर्फ दीन और ईमान की खातिर, सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर, बड़ा आज ये हो सकता है खुदा की रजा के लिए कोई सब कुछ फैसिलिटीज अपना बनाया बनाया घर खेत खलियान सब छोड़ दे, कहे मैं खुदा की रजा के लिए अपने ईमान की खातिर हिजरत करता हूं, हिजरत हो रही है। आप क्योंकि रसूलुल्लाह की जो है बेटी हैं इसलिए समाजी मजहबी सियासी हर एतबार से आपकी एक पोजीशन है, मदीने मुनव्वरा के अंदर एक नुमाया हस्ती के तौर पर है, इस इनवान से भी रिश्ते को लेकर, यानी अल्लाह के रसूल जो हाकिम वक्त हैं, पूरा मदीना अल्लाह के रसूल के कंट्रोल में है, लिहाजा क्या है हर कोई आपसे रिश्ता जोड़ने का भी ख्वाहिशमंद है, हर कोई चाहता है कि जो है आप अल्लाह के रसूल के साथ कुर्बत हासिल हो जाए, नजदीक हो जाए, ज्यादा से ज्यादा इंसानी उसके अंदर मौजूद है फितरा। उस जमाने के इंसान को अलग से तो नहीं, हमारे जैसे ही इंसान थे, जैसे हमारे अंदर होते हैं ख्यालात एहसासात उसी तरह उनमें भी आ जाते थे, नॉर्मल हम जैसे ही तो इंसान ही थे, कोई अलग मखलूक तो नहीं थी, वही आदम के औलाद थे सारे के सारे, लेकिन खुदा का हुक्म जो है कोई और हो जाता है। फिर आपकी शादी इज़दवाजी जिंदगी दूसरा मरहला शुरू होता है, इसमें आपके जाती जो बहुत सारे जिंदगी के पहलू हैं वो सामने आ जाते हैं, मसलन जाती सीरत और किरदार को देखो तो इबादत गुजारी एक पूरा एक हमारे लिए चैप्टर और नमूना है। फिर दूसरों का ख्याल और दर्द का एहसास, दूसरों की तकलीफ का एहसास, ये एहसास जो दूसरों के ख्याल का एहसास है ये सिर्फ मादी लिहाज से नहीं है, दुआ और गजा यानी खाना दोनों में है। आपने वाकया सुनेंगे दुआ में इमाम हसन मुस्तफा अलैहि सलाम ने फरमाया कि हमसायों के लिए दुआ करती रहती थी, खाने में आप देखते हैं 3 दिन रोजा रखते हैं, भूखे खुद भूखे रहते हैं, वो यतीम व मिस्किन व असीर को खिलाते हैं। सादा जिंदगी है, लग्जरीज्म की कायल नहीं है। एक रिवायत है, मैं मुख्तसर पढ़ता हूँ जनाब सलमान से, ये रिवायत हमारी किताबों में मौजूद है कि कह रहे हैं, एक दिन मैं हजरत फातिमा जहरा सलाम अलैहा को मैंने देखा कि एक सादा सी बिल्कुल चादर पहने हुए मैंने देखा, बिल्कुल ही सिंपल किस्म की और पुरानी चादर पहनी हुई है। मैंने हैरत से कहा, वाह, फारस के बादशाह हूं, रूमी शहनशाहों की बेटियां, फारस के बादशाहों की शहजादियां के सोने के तख्तों पर बैठती हैं, नाजुक और बड़े कीमती और बड़े रेशम और पता नहीं उस जमाने की जो कपड़े होते थे वो पहनती हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की बेटी को देखें, जिनकी आजमत व शान व मकाम व मंजिलत उन रूमी और फारस के बादशाहों की औलादों में कई दर्जा बुलंद है, उनको देखें, न महंगे कपड़े पहनती हैं, न ऐशो अशरत की जिंदगी गुजार रही हैं। जब जनाब सलमान ये कहने लगे, सैयदतुन निसाइल आलमीन के जुमले देखें, ये हमारे लिए मशाल रहा है, ये आज भी है, एक्सपायरी डेट तो नहीं रखते हैं, क्या फरमाती हैं जनाब सईदा जरा, क्योंकि जनाब सईदा के जुमले हैं, अरबी पढ़ना चाहूंगा, फरमाती हैं, या सलमान इन्नल्लाह दख्खर लना थियाबक वल करासी लियौमिल आखिरा। अल्लाहु अकबर, सलाम अल्लाह अला सैयदत निसाइल आलमीन। फरमाती है सलमान, परेशान नहीं हो जाओ, तुम्हारे दिल के अंदर जो एहसासात हैं वो नेक हैं, मुकद्दस हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए हयात अबदी में कीमती कपड़े और सोने के तख्त और ये जो दुनियावी जाहिरी जो फिजिकल जो देखने वाली हिस्सी जो शान शौकत है ना लोगों में, घर बड़ा गाड़ी ये वो फलान तख्त सोने के कपड़े महंगे ये इस तरह की बातें हैं, ये कह रहे हैं कि ये उधर भी है, जाहिरी तौर पर भी नजर आएगा। दर हकीकत सईदा क्या फरमा रही है, दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी का फलसफा बयान कर रही है। दुनिया में हो सकता है कि दीनदार कदरे मुश्किल हालात गुजारे मादी एतबार से, लेकिन असली मकसद है हयात की खातिर ये मुश्किल हालात फेस हो सकते हैं, फेस किए जाने चाहिए, ये जिंदगी है ही तो मुख्तसर, कितनी जानी है मैक्सिमम। खुद ये बाअजमत हस्ती जाहिरी तौर पर तो 18 से 20 साल या 19 साल की हयात तय्यब व ताहिर रखी थी। हमारे आइमा अलैहिस्सलाम में से किसी एक इमाम की जिंदगी 100 से ऊपर दिखा सकते हैं, सारे 100 से नीचे, बल्कि बाज आइमा है जो 40 से नीचे शहीद हो गए हैं। खूब अगर वाकई इस दुनिया में ज्यादा लंबी जिंदगी करके फैसिलिटीज हासिल करना कोई बड़ी सआदत वाली बात होती तो इन हस्तियों को हासिल होती, इनके पास ये चीजें होती हैं, हम क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं। मुख्तसर जिंदगी है, उसके हुसूल के पीछे मत पड़ो, ये फरमाना चाहती है। इसी तरह जो है एक और वाकया, मैं इसमें मुख्तसर कहता हूँ, आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, काफी वक्त हो चुका है। अल्लाह के रसूल घर में दाखिल होते हैं, देखते हैं आप चक्की पीस रही हैं, बड़ी मुशक्कत से चक्की पीस रहे हैं, पसीने में शराबूर हैं, उस वक्त देखती हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या बिनताहू तअज्जली मरारतिद दुनिया बिहलावतिल आखिरा। अल्लाहु अकबर, फरमाती है बेटी, दुनिया की मुश्किलात और सख्ती और कड़वाहट को आखिरत की मीठास की याद में, देखें गौर करें, दुनिया की मुश्किलात कड़वाहट को क्या करना है जी, सख्तियों को, मुश्किलात को आखिरत की मीठास की याद से आसान बनाओ, एक बर्दाश्त करो दो। अल्लाहु अकबर, क्या जो है किस तरह की तालीम दे रहे हैं, यानी जैसे किसी बड़े हदफ और मकसद के हुसूल के लिए इंसान सफर करता है, सफर में बड़ी मुश्किलात आ गई हैं, कह रहे यार वो हदफ तक नहीं पहुंचना है, वहां तो बहुत आसानी आसानी है, हाँ सबसे अच्छी अच्छी चल रही, मिसाल देता हूँ यूरोप में, मुमकिन है ये मिसाल आप में से बहुत से सामीन के लिए सूट ना करती हो, लेकिन ऐसे सामीन हैं, ऐसे अफराद हैं जो मैक्सिमम रखते हैं, उनके लिए सूट, मसलन एक आदमी आता है 3 साल 4 साल 5 साल जो है, एक बेचारा कश्तियों में आया है, जान हथेली पे लेके पीछे पैसे और पता नहीं प्रॉपर्टीज बेच के 1 लाख रुपए एजेंटों को दे के यहाँ पहुंचता है, डॉक्यूमेंट्स उसके लिए एक आरजू बनते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसी पोस्टें देखने को मिलती हैं जिससे ये जाहिर होता है कि जैसे सआदत अबदी पाया है क्योंकि यूरोप में रहने के डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं इसको, तो उस तरह एक्सप्रेशन शो कर रहा है, सआदत अबदी मिल गई इसको, ये ऐसा है कि जैसे कोई आदमी कहे ओ देखो सक्सेसफुल हो गया, इस तरह की सिचुएशन बयान करते हैं। तो जनाब सैदा फरमाना चाहते हैं, देखें किसी बड़े नेक मकसद, इलाही नूरानी पैगंबरी करबलाई हुसैनी अलवी मकसद के लिए इंसान चल रहा हो, उस मकसद के इश्क में सफर की मुश्किलात को बर्दाश्त करता है, ये लाइफ ऐसे ही नहीं है, दुनिया की मुश्किलात को बर्दाश्त करो। मसलन जैसे कोई आदमी ज्यारात के लिए जा रहा हो, अब ज्यारात में तकलीफ तो है ना, इराक में गर्मी होगी, उधर ये होगा, मुसाफरत है, खाना मुख्तलिफ है, ये है वो है, लेकिन मकसद आपका ये खाने और फैसिलिटीज को ढूंढना है या ज्यारत करना है, हज के लिए जाना है, काबे में पहुंचना है, अपने फरीजे को अदा करना है या फैसिलिटीज ढूंढनी है, मुश्किलात तो उसके अंदर हैं जनाब, यही फरमाना चाहती हैं। लिहाजा जनाब सईदा का जवाब क्या है, जब अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, जनाब सईदा ने भी जवाब दिया, फरमाया या रसूल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमाइही, दुआया जुमले हैं, हमें चाहिए कुनूत में पढ़े, जनाब सईदा के जुमले हैं। फरमाती हैं या रसूल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमाइही व शुक्र लिल्लाहि अला आलाइही, अल्लाहू अकबर। इससे मिलते जुलते जुमले हमारे ईद नमाज ईद के अंदर जो हम कुनूत पढ़ते हैं या जो तकबीरात पढ़ते हैं उसमें भी मौजूद है। फरमाती है ए अल्लाह के रसूल अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की बेशुमार नियामतों पर जो हमें अता हुई है, शुक्रगुजार हूं मैं। ये कौन हस्ती है कह रही हैं जिसके सबब ये कायनात तखलीक हुई है, वो सबब है ना इस कायनात के वजूद में आने का, जिसकी जिंदगी ये है कि, अब देखें गौर से सुने, जिसकी जिंदगी ये है कि दुम्बे का यानी भेड़ जो होती है या दुम्बा या मेहंडा जिसको कहते हैं, उसका एक चमड़ा है, क्योंकि उस जमाने में यही चीजें होती थी जो ओढ़ना बिछोना था, एक चमड़ा है घर के अंदर। फरमाती है कि एक चमड़े में दिन को, क्योंकि घर में कुछ बकरी या जानवर था, उसे घास देते वक्त मट्टी पर रख के घास नहीं देते थे, अहले बैत है एहतराम करते थे, चीजों को देखते थे ये नुकसान हो सकता है, उसी चमड़े के ऊपर घास फूस रख कर उस बकरी को खिलाते थे, शाम होते ही उसको झाड़ते थे और उसी को अपना बिछौना बना के, मौलाए कायनात और जनाब सैदे कायनात उसको अपना बिछौना बनाते थे। अल्लाह अकबर, देखें ये सैदतुन्निसा वो बाअजमत बीबी जिसके हम शब आशिक हैं। एक अहम नुक्ता बस रिमाइंड अप कर रहा हूं, वो ये है सादा जिंदगी से मुराद बेडिसिप्लिन जिंदगी न लेना, बेतरतीब गंदी जिंदगी मुराद नहीं है, मेल कुचेल में रहना, क्योंकि हम बाबे शाबों से मुतासिर लोग हैं ना, इसलिए मैं बार बार ये रिपीट करना जरूरी समझता हूँ, गंदी मेली कुचेली न निहाना, बालों में मट्टी डाल के रहना, डिसिप्लिन के साथ कपड़े न पहनना, साफ सुथरे कपड़े न पहनना, प्रेस करके जरूरत पड़े तो न पहनना, ये मुराद सादा जिंदगी नहीं है, ये बदनज़्म जिंदगी है, ये गलत है, ये सीरत अहले बैत नहीं है। सादा कपड़ों से मुराद उलझे हुए गंदे मेल कुचेल खराब कपड़े नहीं है, सादा जिंदगी से मुराद ये नहीं कि घर के अंदर चीजें बिखरी हो पड़ी, सादा सा वो जो बाज आप आमिरों और बाबों की कुटियाओं में जाते हैं ना, तो उनके अंदर किस तरह की एक कैफियत होती है, डीम सी लाइट, खौफनाक किस्म का मंजर, लोबान और उसकी इतनी हद से ज्यादा बू और स्मेल और धुआं, और उनकी खुद अपना देखते हैं गेंदे मेल कुचेल में डूबे हुए, ये मुराद नहीं है। घर के अंदर इंसाफ का ख्याल करती हैं, आपने हजार बार सुना जो कनीज के साथ उनका रवैया था, बस आखिरी पॉइंट अपनी जिम्मेदारी को अदा करना, ये हमारी ख्वातीन के लिए बहुत जरूरी है, अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए मेहनत और तकलीफ से जी न चुराना, हत्ता घरेलू जरूरियात के लिए मेहनत करती थी, खुद फरमाती हैं, खुद इस सैयदा के नूरानी कलाम है जो खुतबे फदक दे रही हैं, जो मदीने के खवातीन से खुतबा इरशाद फरमा रही है, वही सैयदा के ये जुमले हैं, उसी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती है लैलती जमीअन उदीरु रहा हत्ता असबह व अबुल हसन यहमिलु हसनन बहुसैना, अल्लाह इतनी बाज़मत बीबी है। फरमाती है देखें कभी होता था मैं पूरी रात चक्की पीस रही होती थी सुबह फजर तक, जबकि अबुल हसन यानी अली अलैहिस्सलाम हसनैन को संभाले हुए होते थे, पूरी रात हाथ की चक्की चलाना, क्योंकि घर में अब एक साथ आटा कटा बनाना है, तो ये जिससे मेहनत से नहीं, जो अपनी जिम्मेदारी को वो नहीं कर रही है, मैं क्यों करूं सारा काम घर का मुझे ही करना पड़ता है वगैरह वगैरह, ये उस शख्सियत की बेटी है जिसका वालिद उस वक्त की मुस्लिम सोसाइटी का जाहिरी तौर पर भी सरबरा है, जिसके पास पूरा बैतुल माल का खजाना भी मौजूद है, उसकी बेटी ये फरमा रही है लैलती जमीअन उदीरु रहा यानी मैं चक्की पीसती रहती थी हत्ता उस बेहो यहाँ तक कि सुबह हो जाती थी और मौला अली अलैहिस्सलाम हसनैन को संभालते थे। इसी तरह इज्तिमाई और सियासी किरदार हमने अय्याम फातिमिया में डिस्कस किया, खुतबे फदा किया को भी डिस्कस किया, जनाब हमदा शोदा को याद रखती थी, ये तमाम चीजों हालात में शोदा को कभी नहीं भूली, जंग ओहद बदर के शहीदों की कब्र की हमेशा ज्यारत की आखिरी लम्हात तक, हत्ता जब आप जो है जरबत के बाद बीमार हुई और न जा सकी अलग बात है, उसमें भी किसी से आपने बास कहते हैं सलमान को बास कहते हैं किसी और शख्सियत से कहा कि आप जाएं वहां पर शहीदों की कब्र में जाएं ज्यारत पढ़ें फातिहा पढ़ें और पानी डाल के आए, यानी हीरोज की कदर करना, जंग उहद बदर के हीरोज को हमेशा एहतराम करना, उनके कब्रों पर जाना, कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि आप जो है जनाब हजरत हमजा उस वक्त सईद शहदा उनके मजार पे न जाती हूँ, और इसके अलावा उम्र का जो आखिरी हिस्सा है बस उसमें एक पॉइंट है, और एक ईसाई राइटर है सलमान कत्तानी जो अमेरिकन लेबनीज हैं, उसकी एक किताब है, उसमें से जो जनाब सैदा के ऊपर लिखी है एक जुमला उनका मैं कोट करना चाहूंगा, वो ये है, आखिरी पॉइंट जो अहम तरीन पॉइंट है वो आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा है, उसमें जो अहम तरीन नुकता जिसकी तरफ तवज्जो रखना जरूरी है, बेशुमार बहुत सारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, वो ये है, आप इस क्राइसिस के टाइम पर पूरी सोसाइटी एक तरफ है, आप अकेली मैदान में उतरती है हक के लिए अकेली, वो जो नौहा सुनते हैं ना अकेली है जहरा, वो ये इस मीनिंग में है, हक के लिए तन्हा अकेली मुबारजा करती है, अकेली सैयदतुन्निसा अकेली है जहरा, वाकयान पूरा शहर बयाबान बना हुआ है, पूरा शहर सहरा बना हुआ, जैसे कि कोई इंसान बचता ही नहीं है, सारे सहरा है और कीड़े मकोड़े रहते हैं, अकेली सैयदतुन्निसा मैदान में उतरती है हक के लिए, हक की खातिर, खुतबा भी जो पूरी जिंदगी में पीछे कभी वो काम नहीं किया वो काम कर रही है, आपका अंदाज, आपका मौकिफ, आपका बयान, आपकी गुफ्तगू बिल्कुल वो है, इससे पहले कभी खुतबे तो नहीं दिए आपने, मैंने डिस्कस किया बड़ी तफसील से अय्याम फातिमिया में, एक मुनफरिद हस्ती, अल्लाह अकबर, इनकलाबी मुबारजाती, डट जाना, ललकारना, सानिया जहरा उन्हीं की बेटी है ना माँ, ये सानिया जहरा की माँ है, अब जिस माँ ने ऐसी बेटी की तरबियत की है उसका ये आलम है, आलिमा गैर मालिमा है, कैसे ललकार रही है, बिल्कुल इसी तरह ललकार रही है, इसी तरह अंदाज इख्तियार करती है, कभी लगता है जैसे मौला अगर नाम हटाकर खुतबा पढ़े तो लगता है उस मैदान जंग में मौला अली सलाम का खुतबा है ही, या मौला अली सलाम की तरह वही अंदाज है जो लोगों को बसीरत समझदारी जिसको आप इंटेलेक्चुअलिटी कह सकते हैं वो अता करना चाहती है, बसीरत देना चाहती है, होशियार करना चाहती है, बेदार करना चाहती है, दुश्मन की तरफ से दोस्त की तरफ हवाले से पहचानवाती है, ये दुश्मन है दोस्त है, उठो बैठो, यही सूरत हाल है। और आखिर में ईसाई राइटर हैं सलमान कत्तानी, ये अमरीकन लेबनीज हैं, लाइफ इन्होंने अमरीका में गुजारी, वो एक किताब उन्होंने लिखी है सैयदुन्निसा में, उसकी किताब के आखिरी कुछ जुमले हैं, मैंने अरबी से उसको वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा किया है, फरमाते हैं हीरो ऐसी ताकत नहीं है जिसका शुमार किया जा सके, जो जिस्म या बाजुओं या इख्तदार की ताकत हो, यानी हीरो की ताकत वो नहीं है जो उसके जिस्म बाजू या वो जो बड़ा बॉडी बिल्डर है भट्टा कट्टा है 6.5 फुट कट है, ये हीरो नहीं है, बल्कि बहादुरी और हीरोगिरी एक ऐसी चीज है जो अकल फिक्र समझ बसीरत मंतिक के जरिए से सामने को मुखातब करती है, फिर अपने मुकद्दस अहदाफ का तयन करती है और उस मुकद्दस अहदाफ तक पहुंचने के लिए एक जामे प्लानिंग और मनसूबाबंदी करती है, फिर फरमाते हैं और जहरा की बहादुरी इस अजीम मीनिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। अब इस जुमले को समझने के लिए मेरे ख्याल में बहुत से लोगों के लिए काफी दिली करना, साहिबान बसीरत हैं आप, लिहाजा फातिमा ये जहरा पहली खातून जिन्होंने आजादाना वाजे खुले लफ्जों से एहतजाज किया, क्रिटिसाइज किया, तनकीद किया, खौफ ज़दा नहीं हुई, हत्ता आपको फिजिकली टॉर्चर किया गया, आप पर अटैक किया गया, आपको कत्ल करने की साजिश को, आपकी शहादत भी हो गई इसी के ऊपर, लेकिन आप हक के रास्ते से पीछे नहीं हटी। मैं आप सबकी जहमतों को तमाम करता हूं और हम सब मिलकर इस दुआया जुमले के साथ इख्तिताम करते हैं, और अपनी अपनी हाजात को अपने जहन में रख लीजिए सारे मोमिनीन मोमिनात, और मिलकर इन दुआया जुमलों को पढ़ते हैं जो हम और आप दुआए तवसल में हर जो है मंगल की रात यानी बुध की रात मंगल के दिन हमें इन दुआ को पढ़ना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैकि या फातिमा तज़हरा सैयदती निसाइल आलमीन या सैयदतना मौलातना इन्ना तवज्जहना واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سبب دي حاجات کو ذہن میں رکھیں وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. بی آپ کی ولادت کی رات ہے اور ہم ایک وبا کی وجہ سے آن لائن اس طرح آپ کے جشن میں شریک ہونے کی سعادت پا رہے ہیں. بی بی آج کی رات کسی کی بھی حاجت کو پرور بی بی تجھے اپنے بابا رحمت للعالمین کا واسطہ, تجھے حسنین علیہ السلام کا واسطہ, اپنے زوجہ نامدار علی مرتضیٰ کا واسطہ, کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹنے دینا. بی بی سب کی دامن کو ان کی آرزوں اور ان کی مرادوں سے بھر کے واپس لوٹانا. بی بی کل کا دن, آنے والے ایام ہم سب کے لیے خیر و برکت کے ایام میں سے قرار دینا, خاص کر دنیا میں جو مظلوم و محکوم ہیں, جن پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, خاص کر یمن کے بچے بچیاں جو آپ کی سیرت طیب و طاہرہ پر عمل پیرا ہیں. بی بی ان کی نصرت فرمانا, ان کو مزید استقامت عنایت فرمانا. یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. وصلی اللہ علی سیدت النساء العالمین فاطمت الزہراء سلام اللہ علیہا ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. یا اللہ پروردگارہ سب کی حاجات کو اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما.